आज के अथर्व के समापन के अवसर पर मंच पर हमारे बहुत ही आत्मीय और छोटे भाई की तरह बहुत ही प्यारे प्रिय, जो लगातार मानसरोवर ग्रुप को सक्रिय बनाए रखने में, वाइब्रेंट बनाए रखने में, लगातार उसको ऊंचाइयां देने में दिन रात सक्रिय रहते हैं भाई, हमारे प्यारे भाई गौरव तिवारी जी। और बड़े सम्मान के साथ मैं उनके आशीर्वाद से अपनी बात शुरू करूंगा। आदरणीय बड़ी माँ यहाँ सामने विराजमान हैं और जिनके आशीर्वाद से सब लोग काम करते हैं, जिनसे सब लोग प्रेरणा लेते हैं, सब लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे कई बार यहाँ मानसरोवर ग्रुप के कई कार्यक्रमों में आने का अवसर मिला। जब रेडियो उड़ान शुरू हुआ था उस समय भी मैं आया, बीच में और कई कार्यक्रम हुए। आज यहाँ आयुर्वेद के दोनों कॉलेजों का जो जॉइंट प्रोग्राम है, डेंटल कॉलेज भी उसमें शामिल है, उसमें आने का। तो मुझे सबसे पहली बात तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि दूसरे विश्वविद्यालय और कॉलेज और महाविद्यालयों की तुलना में ये कैंपस हमेशा बड़ा जीवंत दिखाई देता, बड़ा हर्षोल्लास से, बड़ा उत्साह से, एकदम सक्रिय से दिखाई देता है। बच्चे जिस तरह से एक अच्छे वातावरण में यहाँ काम करते हैं और एक ऐसा लगता है जैसे कि वो एक परिवार की तरह यहाँ रह रहे हैं, घर की तरह एक महसूस करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ उत्साह से करते हुए दिखाई देते हैं। मैं जब भी किसी कार्यक्रम में आया तो ये इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ गौरव तिवारी जी, बड़ी माँ और सब जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, यहाँ डीन है, प्रिंसिपल हैं, कुलपति जी, कुल सचिव महोदय, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए एकेडमिक एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एकेडमिक एनवायरनमेंट में केवल क्लास, केवल टीचिंग, यही सब इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। मायने होता है कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनका भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के साथ जो लिंकअप है उनका बहुत मायने होता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, जैसे 11 दिन का आपने पूरा जो फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज किया और उसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी थी, कल्चर की एक्टिविटीज भी थी, और वो भी जैसे बताया कि अभी च्यवनप्राश आप सब लोगों ने बनाया, मतलब ये भी एक आपके एकेडमिक के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के रूप में इसको चुना और आपने सब बड़े उत्साह से यहाँ काम किया। तो जैसा कि नाम है, सबसे पहले तो मुझे इस नाम ने भी अथर्व, क्योंकि अथर्व को हम ये मान के चलते हैं कि अथर्व जो है ज्ञान का प्रतीक है। हम अथर्व वेद, आपने सुना होगा अथर्व वेद की बात करते हैं। अथर्व गणेश जी का भी दूसरा नाम है और गणेश जी जिनको हम रिद्धि सिद्धि और बुद्धि का देवता हम मानते हैं। तो ये अथर्व जो नाम चयन किया, ये इसको आपने सपने सार्थक किया है। और अथर्व जो है, आपको पता नहीं जानकारी में है कि नहीं, जो ब्रह्मा जी के जो बड़े बेटे का नाम भी अथर्व था। तो अथर्व जो है अपने आप में कई संकेतों को, कई मायनों को, कई प्रतीकों को अपने आप में समेटे हुए हैं। और उस रूप में जब हम अथर्व को देखते हैं तो आपने जो अथर्व का आयोजन किया है ये एक तरह से ज्ञान का आयोजन है। और ज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान में हम देखिए, एजुकेशन और नॉलेज, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो आप केवल किताबी ज्ञान लेते हैं, पढ़ते हैं, कुछ विषयों को पढ़ते हैं, उसको तो हम कह सकते हैं कि आपने एजुकेशन ली, लेकिन जब आप समग्रता में शिक्षित होते हैं या दीक्षित होते हैं तब हम कहते हैं कि आपने ज्ञान अर्जन किया है। और ज्ञान में जब हम बात करते हैं तो आपके विषय का ज्ञान, आपके प्रोफेशन का ज्ञान और साथ साथ आपके जो जीवन है, आपका जो व्यवहारिक ज्ञान है, उस ज्ञान को भी अर्जन करना। तो मुझे लगता है कि इस पूरी ज्ञान अर्जन की जो प्रक्रिया है उसके जितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जितने भी तत्व हो सकते हैं, उन सारे तत्वों का समावेश मुझे यहाँ मानसरोवर परिसर में, इस पूरे समूह में, यहाँ की जो शैक्षणिक संस्थान है इनमें हमें दिखाई देता है और यहाँ के विद्यार्थियों में, आप सब लोगों में हमें दिखाई देता है। मैं इसके लिए लगातार आपकी प्रशंसा करता रहा हूं और आज भी आपको इस अवसर पर बधाई देता हूं। एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि यहां विद्यार्थी आयुर्वेद और डेंटल के विद्यार्थी हैं और खासतौर से मैं आयुर्वेद के विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं कि शायद आप सबको ये गर्व होना चाहिए कि जिस दौर में आप आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, ये वो दौर है जिस दौर में पूरी दुनिया, केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ लौट रही है। तो आने वाला समय आपका है, भविष्य आपका है। चिकित्सा की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो आने वाले समय में आपकी पूछ परख, आपकी कीमत, आपका महत्व बढ़ने वाला है। आने वाले उस भविष्य को अभी से आप समझने की कोशिश करिए उसको पहचानिए और उसके लिए अपने आप को तैयार करिए, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए कि उस आने वाले समय की जो चुनौती है, जहाँ आने वाले समय में बड़ी संख्या में आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेद भारत का गौरव है, आयुर्वेद का जन्मदाता भारत है, आयुर्वेद पूरी दुनिया को भारत ने दिया है, और प्राकृतिक चिकित्सा और जो प्रकृति के साथ जुड़कर जो चिकित्सा पद्धति है उसका कोई जवाब नहीं है उसका। मैं तो बीच में हमारे समय एक दौर ऐसा आया कि जब हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को महत्वपूर्ण मानने लगे और उस पर लोगों का ध्यान जाने लगा, और धीरे धीरे अब लोगों का ये फिर रियलाइज होने लगा है कि हमें लौट कर आयुर्वेद की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, उसके चार बहुत सारी जो दूसरी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, उनसे अगर बचना है तो हमें आयुर्वेद को अपनाना होगा। और आयुर्वेद पद्धति ही एकमात्र पद्धति है जिसको भारत जन्मदाता है और जिसने पूरी दुनिया को दिया है, और आने वाले समय में सब लोग लौट कर उसकी तरफ आ रहे हैं। इसलिए भविष्य की जो चिकित्सा पद्धति है उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, अपने आप को उसके लिए तैयार करिए, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपकी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ थर्व जैसे जो प्रोग्राम हैं, जो आपकी जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये आपके समग्र व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है। और मैं इसलिए इनको महत्वपूर्ण मानता हूँ कि कई बार मैं कई बड़े बड़े डॉक्टरों से बात करता हूँ। एक बार जो अभी हमारे एम्स के जो डायरेक्टर थे, जो अभी प्रेजेंट डायरेक्टर हैं सरमन सिंह, इनसे पहले डॉक्टर संदीप कुमार डायरेक्टर थे, उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आज डॉक्टरों की सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है कि उनके पास चिकित्सा ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन उनके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, और उस कम्युनिकेशन स्किल की कमी के कारण वो अपने पेशेंट को कभी भी कन्विंस नहीं करा पाते, उसके साथ एक ऐसा व्यवहार, उसके साथ एक ऐसा संवाद जिससे कि वो बहुत सारी बातों को वो चिकित्सा के साथ साथ केवल कम्युनिकेशन के आधार पर ही वो सेटिस्फाइड हो सकता है, और बहुत सारी जो उसकी मानसिक समस्याएं होती हैं उनका निराकरण वो केवल उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करके, एक अच्छा संवाद करके, और ठीक ढंग से उनको उनकी बीमारी के बारे में, उसकी दवाइयों के बारे में बताकर वो कर सकता है। तो उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हम एम्स में, उन्होंने एम्स में कम्युनिकेशन स्किल का अपने मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए क्लासेस शुरू की कि हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो इस तरह के जो आयोजन है जिसमें आप सांस्कृतिक खेल और दूसरी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ये आपके व्यक्तित्व विकास को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपके टीम स्पिरिट को, आपके व्यवहारिकता को कहीं ना कहीं बढ़ाने में, उसमें आपको सक्षम बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह के आयोजन, कभी कभी ये कहते हैं लोग कि डॉक्टर और चिकित्सा में इस तरह के आयोजन की क्या भूमिका है, इससे क्या लाभ है, पर मुझे लगता है कि डॉक्टर के व्यक्तित्व विकास में इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कई बार मरीज के साथ दो प्यार के शब्द, दो संवेदनशीलता के शब्द उस मरीज को दवाई से ज़्यादा आराम, दवाई से ज़्यादा राहत पहुँचाने का काम करते हैं। अभी मैं हमारे जो वैद्य हैं बहुत जाने माने गोपाल दास मेहता जी, उनसे भी मैं बात कर रहा था, तीन पीढ़ी से वो लोग इस काम को कर रहे हैं और लगातार वो मानते हैं कि अब आयुर्वेद में विश्वास रखने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसलिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लगातार अपने इस ज्ञान को बढ़ाते रहें, ज्ञानार्जन करते रहें, अपने व्यक्तित्व को विकसित करते रहें, और आने वाले समय में जो हमारे देश और दुनिया की आयुर्वेद की जो आवश्यकता है उस चुनौती को आप सक्षमता के साथ उसका सामना करें, उस जरूरत को पूरा करें।